ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने आर्थिक सुधार योजना की जारी। अर्थतंत्र सुधार के लिए 6 महीने से 3 साल तक संपन्न कर लेने की समय सीमा सहित की कार्ययोजनाएं हुई तय। नागढ़ूंगा सुरंग मार्ग का 90% काम हुआ पूरा। पूस मासांत तक में यातायात शुरू करने की है तैयारी। बच्चों की आंखों की समस्याओं से बचाने के लिए बाहरी वातावरण में खेलने को प्रेरित करने का विज्ञों का है सुझाव। हुमला के तिलगांव में आए हालिया बाढ़ व भूस्खलन से 5 करोड़ से अधिक रूपये बराबर की क्षति का गांवपालिका का है तथ्यांक। और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर लगाई रोक के लिए ट्रंप प्रशासन पर दायर किया मुकदमा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आर्थिक सुधार क्रियान्वयन कार्य योजना 2082 जारी की है। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग 2081 द्वारा दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए सरकार कार्ययोजना लेकर आई है। समिति द्वारा प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिए क्षेत्रगत और मंत्रालयगत जिम्मेदारियों और समय सहित की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस बात का उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है। अर्थतंत्र सुधार के लिए 6 महीने से लेकर 3 साल तक में संपन्न कर लेने की समय सीमा सहित कार्ययोजनाएं तैयार हुई हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए सरकारी खर्चों में कटौती और परोक्ष कर की दरों में कमी लाने और भारतीय रुपए के साथ विनिमय की दर के विकल्प में अध्ययन और अनुसंधान करने का काम 1 साल के भीतर कर लेने की योजना सरकार की है। इसके अलावा भी कई अन्य विषयों में योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें वृद्ध भत्ता मुहैया कराने की उम्र 70 साल की रखने व राष्ट्रीय परिचय पत्र को अनिवार्य करने का काम 1 साल के अंदर कर लेने जैसी बातें शामिल हैं। आंख संबंधी विज्ञों ने बच्चों को आंखों की समस्याओं से बचाने के लिए बाहरी वातावरण में खेलने को प्रेरित करने का सुझाव दिया है। विश्व मायोपिया सचेतना सप्ताह मई 2019 से 2025 के संदर्भ में नेत्र रोग विशेषज्ञों ने कहा है कि मायोपिया यानी दूर की चीजें देखने में कठिनाई होने की समस्या न आने देने के लिए बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की जरूरत है। इस वर्ष सचेतना सप्ताह का नारा स्क्रीन नीचे और आंखें ऊपर है। त्रिगंगा नेत्र प्रतिष्ठान की बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ सृजना अधिकारी ने कहा कि मायोपिया की समय पर ही पहचान कर लेने के लिए अनिवार्य दृष्टि परीक्षण करना जरूरी है। बाढ़ व भूस्खलन के कारण हुमला जिले के तिलगांव में 5 करोड़ रूपये से अधिक की क्षति हुई है। इसी जेठ 1 गते की रात को आए बाढ़ व भूस्खलन से हुमला की नामखा गांवपालिका वार्ड नंबर 6 तिलगांव में 5 करोड़ से अधिक की क्षति हुई है। ये बात गांवपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नंदकृष्ण उपाध्याय ने बताई। उन्होंने बताया कि बाढ़ व भूस्खलन के कारण तिलगांव के पेयजल परियोजना, बिजली, सिंचाई, कृषि योग्य जमीन आदि को जोड़कर 5 करोड़ रूपये से अधिक की क्षति हुई है। वहीं इस आपदा के कारण 18 परिवारों के 33 लोग विस्थापित हो गए हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। इस साल औसत से अधिक बारिश होने की संभावना के मद्देनजर डेंगू का संक्रमण भी बढ़ने का प्रक्षेपण किया गया है। ये जानकारी इपिडेमियोलॉजी तथा संक्रामक रोग नियंत्रण महाशाखा ने दी है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने मध्य प्रदेश अंतर्गत नेपाल भारत सीमा इलाकों में होने वाली आपराधिक घटनाओं व चोरी तस्करी को सख्ती के साथ रोकने का सुरक्षा निकाय को निर्देश किया है। नेपाल सरकार गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश के विभागीय मंत्रालय द्वारा आज जनकपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री लेखक ने ऐसा निर्देश किया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी नेपाल ने आज रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन में अलग अलग बहस कार्यक्रम आयोजित किए। बहस में सरोकार वालों ने कहा कि रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को अपने समाचार और कार्यक्रमों को जनता केन्द्रित बनाना चाहिए। बहस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले सहभागियों ने अपने विचार रखे थे। मौके पर पीएसबी नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि पीएसबी के मूल्य मान्यताओं और नेपाल की अपनी ही विशिष्टता पर आधारित होकर जनता केन्द्रित प्रसारण की ओर अग्रसर होने की सरोकार वालों की अपेक्षा और सुझाव महत्वपूर्ण है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर लगाई रोक के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। इससे पहले अमेरिका के गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रशासन ने हार्वर्ड के कानून का पालन नहीं कर पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिला कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप के इस कदम को एक बयान में गैरकानूनी बताया था। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स पर असर पड़ सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले शैक्षणिक वर्ष में 6,700 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था। ये कुल स्टूडेंट्स की संख्या का 27% है। गजा में हमास संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि आज इसराइली हमलों में 18 लोग मारे गए हैं। एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गजा के कई इलाकों में हमला किया जिसमें उत्तर और मध्य शहर दीर अल बलाह शामिल हैं। सिविल डिफेंस एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी गजा के जबालिया इलाके में इसराइली हमलों में एक महिला और उनका बच्चा मारा गया। हालांकि यह साफ नहीं है कि महिला और बच्चा 18 मौतों में शामिल हैं या नहीं। इसराइली रक्षा बलों ने टेलीग्राम पर कहा कि उनकी वायुसेना ने पिछले दिनों गजा में 75 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से ही इसराइल के साथ उसका संघर्ष जारी है। तब से लेकर अब तक गजा में कम से कम 53,000 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को अमेरिका के बाहर बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने साथ ही 1 जून से यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, मैंने पहले ही एप्पल के टिम कुक को यह बता दिया है कि जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे उन्हें अमेरिका में ही बनाया जाना चाहिए, न कि भारत या किसी और देश में। उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने अपने दूसरे पोस्ट में यूरोपीय संघ पर टैरिफ लगाने को लेकर लिखा कि मूल रूप से अमेरिका से व्यापार में फायदा उठाने के लिए बनाए गए यूरोपीय संघ से समझौता करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारी बातचीत उनसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, इसलिए मैं 1 जून 2025 से यूरोपीय संघ पर सीधे 50% का टैरिफ लगाने की सिफारिश कर रहा हूं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ किया है कि अगर कोई उत्पाद अमेरिका में बनाया या तैयार किया गया है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आर्थिक सुधार योजना की जारी। अर्थतंत्र सुधार के लिए 6 महीने से 3 साल तक संपन्न कर लेने की समय सीमा सहित की कार्ययोजनाएं हुई तय। नागढ़ूंगा सुरंग मार्ग का 90% काम हुआ पूरा। पूस मासांत तक में यातायात शुरू करने की है तैयारी। बच्चों को आंखों की समस्याओं से बचाने के लिए बाहरी वातावरण में खेलने को प्रेरित करने का विज्ञों का है सुझाव। हुमला के तिलगांव में आए हालिया बाढ़ और भूस्खलन से 5 करोड़ से अधिक रुपए बराबर की क्षति का गांव पालिका का है तथ्यांक। और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर लगाई रोक के लिए ट्रंप प्रशासन पर दायर किया मुकदमा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।